शांति बाबा के इस बेहद घर में आप सभी के लिए मैं कह सकती हूं कि जनक राजाओं की सभा इकट्ठी हुई है। राजा जनक का जो गायन है कि राजाई चलाते हुए राजमहल में रहते हुए भी वो कैसे विदेही थे, ट्रस्टी थे, निमित्त भाव था और ये सब कुछ करते हुए भी एक एग्जाम्पल बन गए, तो मैं समझती हूं कि प्रैक्टिकल आप सबका ही ये गायन है कि आप भी अपनी गृहस्थी नौकरी धंधा संभालते हुए भी विदेही अवस्था की साधना सदा करते हैं। कहानी तो आप सबने सुनी है कि जब एक सन्यासी, अगर हम अपनी संगम की भाषा में कहें तो जो समर्पित है वो सन्यासी है जैसे, और आप सब भाई बहने राजा जनक के मिसाल है। तो एक सन्यासी को जब पता चला कि राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई तो उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सब कुछ सन्यास किया और इतनी मेहनत साधना में कर रहा हूं फिर भी मुझे नहीं मिली, राजा जनक को कैसे मिली, मैं जाकर के पहले चेक करता हूं। तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है, क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे आपको मिल गई? तो कहा ये एक दीवा लो आप, जगा हुआ दीपक, और इस दीवे को लेकर आप मेरा पूरा राज दरबार, राजमहल, राज्य भंडार ये सब कुछ देख के आइए, लेकिन सिर्फ ये अटेंशन रखना कि ये दीवा बुझे नहीं। तो वो दीवा लेकर राजा, वो सन्यासी जाता है और पूरा महल, राज दरबार, राज भंडार सब कुछ देखने उस एरिया में जाता है, लेकिन उसका सतत ध्यान किस पर रहा कि दीवे की ज्योत बुझे नहीं। तो जब वो वापस आए तो राजा जनक ने पूछा कि देखा आपने कैसा है मेरा महल, कितना बड़ा है दरबार, कितना भरा पूरा है मेरा भंडार? तो उसने कहा कि भाई मैंने तो गया तो सही, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मेरा निरंतर ध्यान किस में था कि ये दीपक बुझे नहीं। तो राजा जनक ने कहा कि बस यही कारण है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरी सतत ध्यान इस बात पर है कि मेरी जो आत्म ज्योत है, श्रेष्ठ स्मृति की जो ज्योत है वो बुझे नहीं। तो यही पुरुषार्थ आप सभी भी बाबा के विशेष बच्चे कर रहे हैं कि ड्रामा में हमारा ये एक एग्जाम्पलरी रोल है, एक उदाहरण योग्य रोल है कि आप अपना नौकरी धंधा, घर गृहस्थी, परिवार को संभालते हैं लेकिन फिर भी सदा अटेंशन यही रखते हैं कि निरंतर बाबा याद रहे, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति रहे, देह भान से डिटैच रहे, बाबा की याद में रहे। तो ये साधना अगर अंदर अंदर हमारी चलती रहती है तो हम कहां भी हैं हम अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना सकते। अनुभव यही कहता है कि चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे सेंटर में रहो, चाहे मधुबन में रहो, श्रेष्ठ अवस्था वो ही बना पाते हैं जिनका स्वयं पर अटेंशन है। तो हमें खुद के प्रति ध्यान देना है कि हमारी अपनी स्थिति, स्मृति, ये सब कुछ श्रेष्ठ रहे तो हम कहीं भी रहते हुए भी बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं, विदेही हो सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रस्टी बनकर निमित भाव से बाबा का कार्य कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे बाबा कहते हैं आप सबके लिए, बाबा आपको क्या समझते, कौन सा टाइटल देते, आप सब कौन है? बाबा कहते हैं कि आप सब ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स है। क्योंकि बाबा जैसे अधर कुमार थे, गृहस्थी थे, तो बाबा कहते हैं कि आप मेरे हम जिन्स है। तो ये भी एक अपने आप में नशा हो कि देखो बाबा ने माध्यम कौन सा लिया है, जो हमारा हम जिन्स है। तो ब्रह्मा बाबा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते, है ना? जब भी गृहस्थी भाई बहने बाबा के पास आते थे, साकार में जब बाबा थे तब, तो कई भाई बहने कहते थे कि बाबा मैं तो बछड़े वाल हूं, चार पांच बच्चों का बाप हूं, तो इन सब का पालन पोषण करना पड़ता है, तो मैं अधिक सेवा और पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं। तो बाबा उसको क्या जवाब देते थे पता है? बाबा उसको कहते थे कि देखो बच्चे, आप भाग्यशाली हो, आपके पास बनी बनाई गीता पाठशाला है। और कोई अगर गीता पाठशाला खोलेंगे तो उनको तो स्टूडेंट ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा ना, लेकिन आपके पास बनी बनाई गीता पाठशाला है। जो भी दो है, चार है, छह है, पांच है, जो भी आपके परिवार के सदस्य है, वो बाबा की गीता पाठशाला है। तो बाबा कहते थे कि तुम ये समझो कि मैं इन ठाकुरों की पूजा कर रहा, ऐसे नहीं समझो कि ये बच्चे हैं, इनको पालने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, जैसे भक्ति में ठाकुर की पूजा करते हैं तो ये ठाकुरों की आप संभाल कर रहे। तो ये भी हमें याद रहे सदा कि घर नहीं है, परिवार की बात नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार एक बनी बनाई गीता पाठशाला हमें मिली है जिसको हम संभाल रहे हैं, चला रहे। तो आपका लक्ष्य केवल उसके पेट का पोषण करने का नहीं रहेगा, लेकिन उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने का, बाबा की ज्ञान योग की बातें भी उनमें भरने का रहेगा। और ये अगर इसके लिए थोड़ा भी समय आप देंगे कि अपने पत्नी बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान के रतन सुनाते रहे, यज्ञ के समाचार सुनाते रहे, बाबा के रोज के महावाक्य में से दो चार पॉइंट बताते रहे, तो ये जो आपका समय देना है या उसके पीछे पुरुषार्थ करना है, वो ऑल ओवर आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, परिवार के अंदर थोड़ा भी ज्ञान योग का वातावरण बनेगा, तो कलयुगी दुनिया में भी कैसे संभल के जीवन चरित्र संस्कार रखने हैं, वो उनके अंदर समझ और शक्ति आएगी। और वो थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान बुद्धि में रखेंगे तो आपके लिए ही फायदा है कि आपको उनको चलाना सहज हो जाएगा। पूरे ज्ञानी बहुत ऊंचे पुरुषार्थी ना भी बने, लेकिन अगर बुद्धि में ज्ञान की सत्यता और ऊंचाई बुद्धि में होंगी तो भी उनको संभालना सहज हो जाएगा, आपके लिए वो कार्य भी एकदम आसान बन जाएगा। इसलिए दूसरी बात ये भी याद रखें कि ये हमारे पास बनी बनाई गीता पाठशाला है। और चौथी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि आप वो भाई बहने हैं जो अपने आप में अनुभवी मूर्त है, परिपक्व मैच्योरिटी है ना। आज कुमार कुमारी में भल सेवा का उमंग उत्साह बहुत होता है, लेकिन एक मैच्योरिटी, गंभीरता और परिपक्वता वो आध्यात्मिक सेवा के मार्ग में या आध्यात्मिक पुरुषार्थ में बहुत जरूरी। इसलिए आप अनुभवी मूर्त हैं। किस बात के अनुभवी हैं? किस बात के अनुभवी हा? कि दुनिया आपने देखी है ना? दुनिया देखी है, दुनियावी जीवन को देखा है। कुमार कुमारी बाबा के बन जाते हैं, लगन और उमंग उत्साह रखते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो दुनिया में कहते हैं ना कि भाई लक्कड़ के लड्डू जो है वो खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए, है ना। तो उनको उस प्रकार की माया बहुत आती है, जो चीज हमने छोड़ दी है वो फिर खींचती रहती है। लेकिन आपने अनुभव कर लिया है कि सचमुच वो जहर है, विकार वो जहर है, उसमें कोई सुख नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, ये अनुभव कर लिया है। और इसलिए जो अनुभवी मूर्त हैं वे कभी धोखा नहीं खाएंगे, वे माया के कोई भी स्वरूप में फंसेंगे नहीं। इसलिए अनुभवी मूर्त इस अर्थ में कि उस जीवन में आप थे और उससे आपने सबक सीखा है कि विकारों में, देह अभिमान में कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए आत्मभिमानी रहना, पवित्र जीवन बनाना और दिव्य गुणों को धारण करना वास्तव में यही सुख और आनंद के सच्चे आधार है। और दूसरा है गंभीरता। क्यों गंभीरता है? क्योंकि एक जिम्मेवारी वहन कर रहे, एक जिम्मेवारी आपने उठाई है परिवार की, संबंधों में बंध के देखा है, और वो जिम्मेवारी उठाने के कारण आपके अंदर गंभीरता आती है। और इसलिए बहुत जल्दी आप रिएक्ट नहीं करते हैं, समझ सकते हैं कई बातों को और निभा सकते हैं नाते को। तो ये चीज हमें ईश्वरीय जीवन में भी बहुत काम आती है कि एक तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक जीवन है और मैच्योरिटी नहीं है तो एनर्जी वेस्ट बहुत होती है। आप में एक नेचुरली मैच्योरिटी है, गंभीरता है, इसलिए एक तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बहुत जल्दी आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और ईश्वरीय परिवार के अंदर भी, चाहे बाबा के साथ, चाहे ईश्वरीय परिवार के साथ, चाहे निमित्त बहनों के साथ, हमें अपने संबंधों को कुछ भी समा करके, सहन करके भी उसको निभाना है। ये गुण और शक्ति आपको बहुत काम आते हैं। तो उस रीति से भी बाबा के पुरुषार्थ और सेवा के कार्य में सहज आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। और सेवा के कार्य में तो आप जैसे अनुभवी आत्माओं के दो शब्द, दो बोल भी बहुत असरकारक रहते। है ना, हम समर्पित भाई बहने दुनिया वालों को ज्ञान देते हैं तो वो क्या तुरंत हमें सुना देते हैं कि भाई आप तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं इसलिए आप तो कर सकते, हम तो गृहस्थी है ना, तो जहां हमारा भी नहीं चलता है वहां फिर हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, आप सबका, कि देखो इन भाई बहनों को देखो, यहाँ लाखों गृहस्थी भाई बहने आते हैं वो आपके जैसे ही है, वो अपनी दुनियादारी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, फिर भी वो पवित्र और योगी है। जो नियम हम पालन कर रहे हैं, जो मर्यादाएं हम पालन कर रहे हैं, वो नियम मर्यादा ये भी पालन करते, तो एक एग्जाम्पल है आप सभी, आप सबको देखकर दुनिया वालों को ज्ञान में चलना सहज हो जाता है। इसलिए अफसोस नहीं होना चाहिए कि अंतिम जन्म में हम गृहस्थी में बंधे हुए हैं, नहीं तो हम भी समर्पित हो जाते। ऐसे होता है कभी ऐसे विचार आते हैं ना कि भाई हम भी शादी के पहले ज्ञान में आते तो हम भी समर्पित हो जाते, है ना, ऐसे सोचते हैं अपने गृहस्थी भाई बहने। लेकिन ये अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपको बाबा ने क्यों गृहस्थ में रखा है। अगर बाबा आपको ऑर्डर करे कि ए टू जेड सभी ब्राह्मण समर्पित हो जाएं, तो क्या आप तैयार है तैयार बाबा अगर कहे तो तैयार है ना, तो देखो बाबा कहे तो आप समर्पित होने के लिए तैयार रही है, माना आप अपनी इच्छा से गृहस्थी में नहीं रह रहे है ना, परंतु बाबा ने आपको वहां रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो प्रवृत्ति मार्ग की है ना, दुनिया तो प्रवृत्ति मार्ग की है, संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का बना हुआ है, इसलिए दुनिया में जो लाखों करोड़ों अरबों लोग गृहस्थी हैं उनकी सेवा कैसे होगी अगर आप उसके बीच में न रहे तो, है ना, हर कोई हमारी तरह ही छोड़ छोड़ के यज्ञ के अंदर बैठ जावे तो उन सब की सेवा कैसे होगी। तो ये भी बुद्धि में आप रखें कि हम अपने कर्म बंधन से अब उस दुनिया में नहीं, अब आप अपने कर्म बंधन से वहां नहीं है, अब आप बाबा की सेवा के निमित्त वहां है। तो ये बुद्धि में रखने से आप अपने हर लौकिक के प्रसंग में सेवा का मौका बना सकेंगे और खुद भी हल्के रह सकेंगे। तो जैसी आप सबकी विशेषता है उस हिसाब से अगर आज के टॉपिक को सोचते हैं तो मैं समझती हूं कि यज्ञ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार आप सब भाई बहन है ना, क्योंकि बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं। अलौकिक जन्म लेने के बाद अब आपकी जवाबदारी डबल हो गई है। पहले आप सिर्फ अपना लौकिक संभालते थे, लेकिन अब आपको और भी जवाबदारी मिल गई है इस अलौकिक यज्ञ को भी संभालने की, है ना, तो डबल ताजधारी तो अभी से ही आप हो गए, डबल जिम्मेवारी। लेकिन भारी होने की बात नहीं, क्यों भारी नहीं होना है, क्योंकि आप जब डबल जिम्मेवारी उठानी आई है तो आप बाबा भी हमारा साथी है ना, बाबा हमारा साथी, कार्य तो बाबा का है, हम सब तो निमित्त हैं। कल्प पहले भी ये यज्ञ चला है, फैला है, सफल हुआ है, इसलिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है, है ना, कल पहले मुआफिक फिर से ये यज्ञ चलेगा ही, इसलिए हम इसलिए भारी नहीं होते हैं कि बाबा हमारा साथी। तो अलौकिक जन्म लेने के साथ आप सभी डबल जिम्मेवारी के ताजधारी बन गए हैं। स्वीकार की है ये जिम्मेवारी कि लौकिक परिवार के साथ साथ हम इस अलौकिक यज्ञ के भी जवाबदार हैं। ऐसी जवाबदारी जिन्होंने स्वीकारी है वो हाथ ऊपर कर सब दे। बहुत अच्छा है ना। तो हमने अपनी राजी खुशी से और प्यारे बाप दादा ने हम सब में विश्वास रख करके ये डबल जिम्मेवारी दी है, पर प्रैक्टिकली हम इसलिए हल्के हैं, मुंझते नहीं हैं, भारी नहीं हैं, क्योंकि बाबा वास्तव में तो बाबा जवाबदार है, हमें निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का मौका देता है। तो एक तो जब भी कोई भी बात हमारे सामने आती है इस यज्ञ की जिम्मेवारी उठाने में, तो हम सदा बाबा से ये बात करें कि बाबा जिम्मेवार तो आप है, लेकिन मैं आपका पूरा मददगार बच्चा हूं। मैं अपना अनुभव आपको सुनाऊं कि सेवा में पहले जवाबदारी की बहुत कॉन्शियसनेस रहती थी और उसके कारण भारी होते थे, वर्क कॉन्शियस भी हो जाते थे कि भाई बाबा के काम के लिए हम जवाबदार है, जवाबदार है, तो उस हिसाब से कॉन्शियस हो जाते थे। लेकिन फिर अब मैं बाबा से ये बात करती हूं कि बाबा जिम्मेवार आप है, हम मददगार हैं। बेशक हम आपके पूरे पूरे मददगार हैं, जिगरी मददगार हैं, हर घड़ी हर बात के मददगार हैं। तो ये समझने से हल्कापन रहता है, करेंगे सब कुछ वही, लेकिन हम भारी नहीं होंगे। तो बाबा के इस बेहद यज्ञ, यज्ञ माना बाबा का ये विद्यालय, बाबा की ये संस्था, बाबा का ये विशाल कार्य, अब इस यज्ञ के लिए हमें क्या जिम्मेवारी संभालनी है, क्या इस यज्ञ की रक्षा करनी है? तो मैं पांच बातें आपको बताऊंगी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, है ना। बाबा की मुरली में आता है ना कि इस यज्ञ का मालिक, इस यज्ञ को रचाने वाला शेठ वो शिव बाबा है, है ना? हम कहते हैं ना भाई शिव बाबा का ये भंडारा है और ब्रह्मा का भोजन माना शिव बाबा का भंडारा है और प्रैक्टिकल इसको चलाने वाला ब्रह्मा और ब्राह्मण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाबा को जानते हैं, ब्राह्मण भाई बहने पवित्र योगी हैं, इसलिए उनके तन मन धन और मन वचन कर्म के सहयोग से इस यज्ञ की संभाल हमें करनी। तो एक तो यज्ञ में सदा शांति बनी रहे, चाहे हमारा ये ईश्वरीय परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, हम लाखों भाई बहने हो जाए, तो भी हमारे सेंटर की, जोन की और हेडक्वार्टर की माना टोटल इस यज्ञ में संपूर्ण शांति बनी रहे, क्योंकि यज्ञ शांति के लिए रचा जाता है। इसलिए हम सब ब्राह्मणों का कार्य है कि इस यज्ञ में शांति बनाए रखने में हम मददगार बने। हम कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े या कोई कलह क्लेश के लिए निमित्त न बन जाए, क्योंकि हम आए हैं बाबा को मदद करने के लिए, न कि हम कोई प्रॉब्लम बनने के लिए आए। अब शांति बनाए रखने में तीन बात हम याद रखेंगे। बाबा की साकार मुरली का ही ये महावाक्य है जो हम सब सदा याद रखें कि अज्ञान काल में अशांति फैलाना असुरों का काम माना जाता है, गलत काम माना जाता है। तो बाबा के ये महावाक्य है कि अज्ञान काल में अशांति फैलाना असुरों का काम है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के हिसाब से अशांत होना भी असुरी कार्य है, वो भी असुरी कार्य है। इसलिए मुझे हर हालत में हर आत्मा के साथ हर स्थान पर शांति से अपना कारोबार करना है। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि रोज बरोज के जीवन में अभी भी माताओं के भट्टी में जो बाबा का संदेश आया है आप सबने भी सुना होगा, उसमें भी बाबा ने ये अंडरलाइन कराया खास कि देश विदेश के बच्चों को बाबा कहते हैं कि अब भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर्स बच्चों के सामने आते रहेंगे। तो हम ये अपने आप में पक्का कर ले कि कोई भी बात हो, लौकिक चाहे अलौकिक, इस परिवार के अंदर, लेकिन हमें शांति से ही हर काम करना है। कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें अपना स्वधर्म पक्का है। हम अपने जीवन में रोज बरोज के कार्य में 50 बार ओम शांति बोलते हैं, तो सिर्फ बोलना नहीं है, ओम शांति बनना है। मुझे ओम शांति बनना है, शांति की आत्मस्थिति बनानी है, इसलिए मुझे शांति से कारोबार करना है। दूसरा है कि कई बाबा के हम सब बच्चे अशांति कई बार नहीं फैलाते, लेकिन हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना ऐसा होता है कि शांति भंग होती। तो दूसरी बात हम ये ध्यान रखें कि हमें शांति भंग नहीं करनी। एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि हम धम धम करके चल के आएंगे, तो हमारे चलने की विधि ऐसी है कि हॉल में जो योग में बैठे होंगे उनका अटेंशन जाएगा, बाबा के कमरे में योग में बैठे हैं लेकिन हम बाहर ऐसे आवाज करते हुए चल के आते हैं कि अंदर बैठे हुए लोगों का योग टूट जाता है। कई बार हम क्लास में आके, योग में आके ऐसे धम करके बैठेंगे कि आसपास के 4-5 हिल जाएंगे, जैसे कोई धरती कंप हो गया। तो फरिश्ता, बाबा कहते हैं ना, दिव्यता हमें सीखनी है कि हम कितना, क्योंकि मुझे बाबा का एक बात सदा याद रहती है कि जब भी आप क्लासरूम के या योग रूम के दरवाजे के पास आते हैं, इतना योगी बन के फिर आप प्रवेश करें ताकि योग का वातावरण डिस्टर्ब ना। ऐसे नहीं कि हम अपनी लौकिक स्थिति के साथ आए फिर अंदर आकर योग में बैठे, नहीं, इतने डिटैच होके योगी बन के हम आए और प्रवेश करें कि योग का वायुमंडल जरा भी डिस्टर्ब ना। और अनावश्यक है ना, कई बार समझो हॉल है, योग रूम है, हम उसके दरवाजे तक गाड़ी लेके जाते और वहां उतरेंगे, आवाज होता है। अगर जरूरी नहीं है, थोड़ा गाड़ी दूर पार्क करें और शांति से हम क्लासरूम में आए, दरवाजे तक पहुंचेंगे तब तक कई लोग आपस में बात करते हुए अंदर आएंगे, तो ये है शांति भंग करना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि यज्ञ को शांति कुंड हमें बनाना है, हर घर को, हर सेंटर को और मधुबन यज्ञ को हमें शांति कुंड बनाना है। तो हम ये छोटी छोटी शांति भंग करने वाली जो बातें हैं उसका ध्यान रखें। और तीसरी बात, एक तो हम शांत रहे, बाबा कहते ना कि जितना हो सके साइलेंस पावर में रहे, अशांति भंग, अरे शांति भंग नहीं करें। और तीसरा कि कोई भी कारण से अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बने, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा और आपका नभी बने, आपका और उसका आपस में नभी बने, कोई भी कारण हो जाए, लेकिन अब मैं एक व्यक्ति नहीं हूं। पहले तो हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे, है ना भाई, पहले दुनिया जानती थी कि भाई ये देवजी भाई, ये देवानंद भाई, एक व्यक्ति के रूप में आपको जानते थे ना। लेकिन अब आपको लोग कैसे जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले। तो अब आप एक संस्था बन गए हैं, व्यक्ति नहीं। इसलिए कुछ भी कारण बने, लेकिन हमें अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बनना है। भले हमें कुछ त्याग करना पड़े, लेट गो करना पड़े, कुछ झुकना पड़े, कुछ भी हो, पर अशांति फैले, हमारे आपसी झगड़ों की बात बाहर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हम यज्ञ रक्षक है, यज्ञ की शांति बनाए रखने में हम जिम्मेवारी से कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी बात, यज्ञ की रक्षा में यज्ञ की पवित्रता जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सारे विश्व में ऐसा है जहां के सभी सदस्य पवित्र है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ये सामान्य नहीं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सच्चा और पक्का सदस्य वो ही है जो पवित्र जीवन जीता है। भल कोई रोज सेंटर में आते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, लेकिन जब तक पवित्रता नहीं अपनाते हैं वे ब्राह्मण नहीं। इसलिए हम जो बाबा के सच्चे पक्के पवित्र ब्राह्मण हैं, तो हमारा सदा ये लक्ष्य रहे कि हमारे इस संगठन में पवित्रता की पूर्ण शक्ति रहे, उसमें जरा भी हम ढीले ना हो। इस धारणा में हम कोई भी गड़बड़ ना चला ले, कच्चाई ना चला ले। हम यहां आत्मिक दृष्टि वृत्ति से चले, ना कोई बहन में फंसे, ना कोई भाई में फंसे, हमारी सबके प्रति रूहानी नजर रहे और पवित्रता का फाउंडेशन पक्का रहे, क्योंकि पवित्रता
सबसे बड़ा सेफ्टी कवच है। दुनिया में तो इविल वाइब्रेशंस बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन लोगों में दैहिक वृत्तियां बहुत जाग रही। आप देखते हैं दुनिया के समाचार कि लोगों ने हर संबंध की मर्यादाएं तोड़ दी, इतने दैहिक भाव में आ गए। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को कहा है कि देह भान से वैराग्य आना चाहिए। देह भान से वैराग्य आए माना हम निरंतर और शरीरी आत्मिक स्थिति के पक्के बने। ब्रह्मचर्य से हम शुरू करते हैं अपने पुरुषार्थ को और हमारी मंजिल है देवताओं की महिमा में क्या बताते हो, संपूर्ण निर्विकारी। ब्रह्मचर्य से शुरुआत है। कितना ऊंचा बाबा का कार्य है, कितने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं। आज दुनिया में सभी धर्म सभी संस्थाएं अटक गई है पवित्रता पर आकर। प्यार से बोलो, सच बोलो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, ये हर कोई सिखाता है, पर रुक कहां जाते हैं? पवित्रता की बात पर हर कोई रुका हुआ है। हमारा यज्ञ कितना श्रेष्ठ है कि यहां ब्रह्मचर्य से तो आप एडमिशन ले पाते, ब्रह्मचर्य से आपके पढ़ाई की शुरुआत होती और मंजिल है संपूर्ण निर्विकारिता। तो हम स्वयं इसमें पक्के रहे और जो भी हमारे साथी भाई बहने हैं, जिस भी सेंटर में, पाठशाला में, उपसेवा केंद्र में आप जाते हैं, वहां के संगठन में एक दो को पवित्रता में मजबूत करते रहे। ये है इस यज्ञ की रक्षा करना। क्योंकि हमारे बाबा का मुख्य कार्य कौन सा है? कौन सा है? पतितों को पावन बना। बाबा मुरली में क्या कहते? मैं किस लिए आया? पतितों को पावन बना। भक्ति में सबने किस लिए पुकारा? हे भगवान आओ, हमें पतित से पावन बना। तो ये बाबा का मुख्य कर्तव्य है। माना इस यज्ञ का मुख्य कार्य है सारे विश्व को पवित्र बनाना। तो उसके लिए हम ब्राह्मण भाई बहने बाबा को ये वचन दें कि मैं स्वयं पवित्र पक्का रहूंगा और हमारे भाई बहनों को पवित्रता में पक्के बनने में मददगार रहो। ये है इस यज्ञ की रक्षा। तीसरी बात, इस यज्ञ की अखंडितता बनी रहे। बाबा का यज्ञ सदा अखंड रहे और ये रहेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है ना, क्योंकि ये बाबा का कार्य है। और हमारी दादियां, हमारे इतने महान बड़े भाई बहने हैं, ये यज्ञ सदा अखंड रहेगा। बाबा ने कहा है यज्ञ अमर है, चलता ही रहेगा। तो कोई भी कारण से हमें यज्ञ को तोड़ने का काम नहीं करना। कोई अलग ग्रुप नहीं बनाना है, यज्ञ से अलग कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है। क्योंकि बाबा महान है, बाबा का कार्य महान है। हम भाई बहने भी जो दुनिया नहीं कर सकती है उस पवित्रता में कितने महान है, लेकिन अपने अपने संस्कारों के वश, स्वभाव संस्कार के टकराव में आकर कई बार हम अपना अलग अलग चौका बनाकर बैठ जाते। लेकिन अगर मुझे बाबा से प्यार है तो मुझे जितना हो सके मिलके चलने का प्रयास करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, एक मत और एक बन के चलने का ही लक्ष्य रखना है। आज दुनिया में इस बात को आप देख सकते हैं, जो लोग परिवार में मिलके नहीं चले, संयुक्त परिवार को तोड़ा, विभक्त कुटुंब बनाए, या जिन्होंने रिश्तों को भी तोड़ा, आज उसके परिणाम सामने आ रहे। उन परिवार के बच्चों में, परिवार के वातावरण में संगठन और बुजुर्गों के कारण जो अच्छे संस्कार आते थे वो नहीं आए। उसका परिणाम आज हर कोई अनुभव कर रहा है। तो हम बाबा के बच्चे, सारी दुनिया के पूर्वज हैं, हम ये ध्यान रखें कि हम मैं तू तेरा मेरा न करें। ये बाबा का कार्य है, बाबा के सेंटर्स हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा की सेवा है। ये सदा बुद्धि में रखकर, जैसे हमारी दादियों ने निमित्त भाव से इस यज्ञ को इतना बड़ा किया, तो हम सब भाई बहने भी क्या करेंगे, क्या करेंगे? दादियों को ही फॉलो करेंगे ना? हम भी मिल करके इस यज्ञ को अखंड बना के चलेंगे। अपने बड़े छोटे साथी सबके साथ निभाएंगे, तोड़ करके अलग अलग होने की प्रवृत्ति नहीं करेंगे। तो जो दादी जी ने हमें तीन धारणाएं बताई हैं यज्ञ की अखंडता के लिए, हम उसको पक्की करेंगे। निमित्त भाव से चलना है, निर्माण भावना रखनी है और निर्मल वाणी बोलनी है। क्योंकि यही तीन धारणा न होने के कारण जहां निमित्त भाव नहीं है वहां हम मालिक बन जाएंगे कि मैंने ये सेंटर खोला है, मैं इसका अनन्य भाई हूं, मैं कहूं ऐसे ही करना है और कोई आगे नहीं आ सकता है। ये सब कहां आता है? जहां निमित्त भाव नहीं। आज मैं निमित्त बन सकती हूं तो और भी तो बन सकते हैं। मैं निमित्त अनन्य हूं तो दूसरे चार भी तो अनन्य बन सकते हैं। तो विशालता रखें, संकुचितता नहीं रखें कि और कोई नहीं हो सकता है, और निर्माण भावना। मान शान की बातों के कारण ही लड़ाई झगड़े होते, परंतु बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ स्वमान दिया है, हम उस स्वमान की ऊंचाई में रहे। और आप ये अनुभव करके देखिए कि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं और सबको सम्मान देते हैं, ऑटोमेटिक उनको मान मिलेगा ही। हो सकता है आपका उन आत्माओं से कोई कड़ा हिसाब हो तो तुरंत नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, लेकिन आप अपनी धारणा में शक्तिशाली बनेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे स्वमान में खुश रहना है और सबको दिल से सम्मान देना है। लंगड़ा सम्मान नहीं, बाबा कहते ना कई लंगड़ा सम्मान देते, माना मतलब से ऊपरी ऊपरी दिखावा नहीं करना है, लेकिन मैं दाता की बच्ची दाता हूं, मुझे सबको दिल से सम्मान देना है। आप थोड़े समय के बाद अनुभव करेंगे कि ऑटोमेटिक सब आपको ऊंची नजर से देखेंगे, मान शान स्थान देंगे ही, आपको इसकी इच्छा नहीं रहेगी क्योंकि आप अपने आप में ही महान है। और निर्मल वाणी, क्योंकि कड़वे शब्द बोलने से, एक दो पर व्यंग कसने से संबंध खराब होते और वहां फ्रिक्शन होता है, परिवार में चाहे यज्ञ में। इसलिए अखंडितता के लिए हम ये तीन धारणा जो बाबा ने बताई हैं, दादी जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई, हमारी सब दादियां दिखा रही है, वो हम भी अपने में अपनाएं। चौथी बात, यज्ञ की सर्वश्रेष्ठता सदा हमें अपने आचरण से सिद्ध करके बता दी। ये यज्ञ सामान्य ना हो जाए, क्योंकि ये कोई मनुष्य का नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, सर्वश्रेष्ठ संस्था है, क्योंकि भगवान की रची हुई है। सत्य ज्ञान यहां दिया जाता है, सचरित्र यहां बनाया जाता है। तो ये जो हमारी सर्वश्रेष्ठता है वो सदा हमें बना के रखनी, और उसके लिए हम सबको क्वालिटी बच्चा बनना है, बाबा की क्वालिटी बच्चे हम बने। बच्चे तो हम सब हैं, लेकिन बाबा कहते ना क्वालिटी बच्चे, माना हम अपने चरित्र में, आचरण में, चलन में इतनी क्वालिटी आत्मा हो कि लोग कहें कि सचमुच ये भगवान के लोग हैं। बाबा कहते ना दुनिया कहे ये अल्लाह लोग है, और बाबा ने कहा था कि अच्छी क्वालिटी माना वारस क्वालिटी बनना, क्वालिटी आत्मा माना वारस क्वालिटी, बाबा के भगत क्वालिटी बच्चे हम ना बने, साधारण पुरुषार्थी बच्चे नहीं, लेकिन वारस क्वालिटी हम बने। हमारे ज्ञान की सत्यता, हमारे ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, हमारी धारणाओं की ऊंचाई, ये सब सिद्ध होती रहे हमारे जीवन से। तो ये नशा भी हो और प्रैक्टिकल हम ऐसी क्वालिटी विशेष आत्माएं हो, ऐसे कर्म योगी फरिश्ते हो जो लोग कहें कि सचमुच ऐसी और कोई विद्यालय नहीं। बाबा कहते ना अभी आप साधारण पुरुषार्थी होते हो, इसलिए लोग अभी तक भी ये कहते हैं कि हाँ ये भी संस्था है, अच्छा काम करती है, लेकिन वो भी अच्छा करती है, वो भी अच्छा करती है। ये नहीं, बाबा कहते ना सब ये कहे कि केवल यही संस्था है जो सबका कल्याण कर सकती, तो उसके लिए हमें क्वालिटी बनना पड़ेगा। अच्छा योग करें, अच्छा ज्ञान गहरा समझे, अच्छी धारणाएं हम करें और बहुत दिव्य रीति से सेवा का कार्य भी करें। तो आप अपने त्याग, अपनी तपस्या, अपनी सेवा, अपना सहयोग, अपना व्यवहार सब बात को क्वालिटी बनाइए और अच्छा, ताकि हम सब मिलकर इस यज्ञ की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध कर सकें। और पांचवी बात कि ये यज्ञ सदा संपन्न रहे, यज्ञ की संपन्नता की सुरक्षा हमें करनी है। हम बाबा के लाखों बच्चों के होते इस यज्ञ के अंदर कभी भी कोई बात का अभाव नहीं होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। चाहे ऐसा ही शांतिवन दूसरा बनाना हो, चाहे ऐसा ही 20,000 की कैपेसिटी के सामने 1,00,000 का लोग बैठ सके ऐसा हॉल बनाना हो, चाहे 1,000 सेंटर खोलने हो, हमारे यज्ञ के अंदर हम लाखों बाबा के बच्चे हैं, यहाँ कोई भी कमी ना हो, ना धन की, ना साधन की, ना अच्छे सेवाधारियों की। हम लक्ष्य रखें, जब बाबा हमारा भंडारा और भंडारी भरपूर रखते हैं तो हम सबका फर्ज क्या है? हम सबका फर्ज क्या है? बाबा के इस बेहद घर को भरपूर रखना। इसलिए जैसे आप अपनी जवाबदारी से परिवार को संभालते हो, ऐसे ही हमें यज्ञ को भी संभालना है, तन से, मन से, धन से, साधन से, बुद्धि से, गुण से, कला से, समय से, हर प्रकार से हमें सहयोगी बनना है और बाबा के बेहद घर को भरपूर रखना है। है ना, आप सभी का अनुभव होगा कि बाबा ने हमारे लौकिक घर को कितना भरपूर किया है, है ना? हम आए तब क्या थे और आज क्या है? है अनुभव ये? हाँ, हमारे तन में, मन में, धन में बाबा ने बरकत भर दी। बरकत शब्द समझते हो? हाँ, उसमें ताकत भर दी, है ना? हम आए तब क्या थे और आज सब बाबा के बच्चे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से कितने संपन्न और आगे बढ़ गए। तो हमारा यज्ञ, चाहे मधुबन घर है, चाहे जोन है, सेंटर है, हम इतने सहयोगी और मददगार रहे कि कभी दादियों को कोई चिंता ना हो, बड़ों को कभी कोई बात का टेंशन ना हो। आप सब इतिहास में जो प्रसिद्ध है उस शब्द में मैं कहूं, ऐसे भामाशाह बन जाएं जो बाबा का घर भरपूर रहे, है ना? जो करता है उसका जमा ही है, है ना? इस बात में आप निश्चिंत रहे कि हमने बाबा के लिए दिया है तो हमारा 100% जमा है। अगर हम समर्पित जैसा उसका उपयोग करेंगे हमारा हिसाब बनेगा, पर देने वाले का तो 100% जमा है। इसलिए और कोई बात न सोचकर हम सदा बाबा का हिस्सा निकालें कि अगर मेरा 5 बच्चों का घर है तो 6वां बाबा भी है, उसका भी पूरा हिस्सा है और वो मुझे इस बेहद के यज्ञ में जरूर देना है। तो इस प्रकार से अगर हम सच्चे यज्ञ स्नेही बन जाएं, यज्ञ रक्षक बन जाएं, यज्ञ सहयोगी बन जाएं, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? जो बाबा चाहते हैं कि ये यज्ञ अखंड निर्विघ्न बन जाए। ऐसा रिजल्ट लाना है ना हम सबको। तो ये तीन बात हमें करनी है और बाबा को हमें ये आशा जो बाबा की है वो पूरी करके दिखानी है कि हम मिल करके इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर ही रहेंगे। ओम शांति।